समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। अनुजा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून मुकेश। Mukesh, it's 28th of November today, and for United States and Canada, it's the Thanksgiving Day. The fourth Thursday of the month of November is always celebrated as Thanksgiving Day, extending it to the whole of the weekend. But of course, now it has become popular across the world, and why not? It is a time to be grateful for the immense blessings in our lives. It's a time of reflection, appreciation, and the expression of gratitude in its various forms. Thanksgiving is a time of gratitude for those who bring their light and laughter to us every day. Our co-workers, friends, and family, near and far. We must always feel gratitude towards them.
बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन पर हम आश्रित होते हैं और हमारे लिए वो काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके लिए धन्यवाद तो बनता ही
है। जी, everyone that has enriched our lives in some manner deserves our thanks, and incorporating anything which brings positivity within us in our lives should be welcomed. So do not wait, pick up your phone and talk to people who really matter in your life, expressing your gratitude, your appreciation towards them. And today we thank our listeners as well for listening to us, being part of our community and for their support every time. Without our listeners, we are nothing.
Bilkul.
Let's begin our parikrama now with all that's making news today at this hour of the day.
Sansad ki dono sadanon ki karwahi vibhinn muddon par vipakshi dalon ke hangame ke karan kal tak ke liye sthagit.
President Draupadi Murmu emphasizes India's defense capabilities have captured worldwide attention driven by its commitment to innovation and self-reliance.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आज शाम रांची में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
Curtains to come down on the 55th International Film Festival of India with a vibrant closing ceremony in Goa this evening.
भारत के रिनचेन युडोल ने पहली विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा.
एंड इन बैडमिंटन, पीवी सिंधु एंड लक्ष्य सेन एंटर द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ सिंगल्स इवेंट्स एट सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट इन लखनऊ. And yes, Mukesh, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And of course, today being the closing day of the 55th International Film Festival of India, we will talk about IFFI, the International Film Festival of India, going on in Goa. This grand finale marks the culmination of 9 days of cinematic brilliance, celebrating the art of storytelling and the spirit of global cinema. Featuring over 200 films from 75 countries, masterclasses by industry stalwarts and inspiring panel discussions, this year's IFFI has showcased the unifying power of cinema.
बिल्कुल, समापन समारोह भारत के सिनेमा जगत की जीवंतता और विविधता को प्रदर्शित करेगा। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय फिल्मों की कलात्मक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रभाव को श्रद्धांजलि देते हुए उत्सव के बेहतरीन क्षणों को एक साथ पिरोएगा। ये समारोह एक ऐसे माध्यम के रूप में सिनेमा के सार को प्रतिबिंबित करेगा जो सीमाओं से परे है और संस्कृतियों को एकजुट करता है।
एंड दिस ईयर्स इफ ही हैज बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमैटिक डाइवर्सिटी and innovation, featuring a diverse selection of films spanning genres, languages and cultures, masterclasses by eminent filmmakers providing unique perspectives on the art and craft of filmmaking, and engaging panel discussions on the future of cinema and its role in fostering ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज एज वेल।
जी हाँ, समारोह में कई फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी जो इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे। इसमें सुकुमार, दिलराजू, आनंद तिवारी, अमृतपाल सिंह बिंद्रा और ऑस्ट्रेलियाई निर्माता स्टीफन वोली जैसे प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता शामिल हैं। संगीतकार अमाल मलिक और मामी खान के साथ प्रसिद्ध अभिनेता अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, जयप्रदा, श्रेया सनन, प्रतीक गांधी, समीर कोचर, श्रेया चौधरी, ऋत्विक भौमिक और नवीन कोहली भी उपस्थित रहेंगे। सिनेमा जगत के दिग्गजों का ये चकाचौंध भरा जमावड़ा इस महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म प्रतिभाओं को एक साथ लाने का अद्भुत मंच है।
राइट, इफ यू टॉक अबाउट द क्लोजिंग सेरेमनी, दिस इवनिंग विल ऑल्सो फीचर रिनाउंड आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स ब्लेंडिंग म्यूजिक, डांस एंड सिनेमेटिक चार्म। द सेरेमनी विल इंक्लूड म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेज बाय सेलिब्रेटेड सिंगर्स लाइक स्टेबिन बेन, भूमि त्रिवेदी एंड अमाल मलिक, and also actor Shreya Saran, musical storytelling by Nikita Gandhi and Digvijay Singh Pariyar, who will captivate the audience with soulful renditions and energetic performances. This evening will celebrate exceptional achievements in filmmaking with the presentation of prestigious awards as well. Honoring the finest cinematic work, the best feature film of the festival will be taking home the most prestigious award of IFFI, the Golden Peacock, with the winning team of the director-producer duo receiving the Golden Peacock Trophy, a certificate and also a cash prize.
बिल्कुल, देश की समृद्ध नृत्य विरासत का उत्सव मनाते हुए रिदम्स ऑफ इंडिया नामक एक मनमोहक प्रदर्शन शाम का केंद्र बिंदु होगा। ये प्रदर्शन दर्शकों को उत्तर भारत का कथक, दक्षिण भारत के मोहिनीअट्टम और कथकली, पूर्वी भारत के मणिपुरी और पुंगचोलम ड्रमर्स और पश्चिम भारत का गरबा जैसे शास्त्रीय नृत्य रूपों के माध्यम से पूरे भारत में एक लुभावनी यात्रा पर ले जाएगा। गतिशील LED दृश्य, कोलम जैसे पारंपरिक रूपांकन और प्रतिष्ठित संगीत अनुभव को और समृद्ध करेंगे, जिसका समापन भारत की विविधता में एकता को प्रदर्शित करने वाले गीत देश मेरा रंगीला के साथ भव्य समापन होगा। ये समारोह अगले साल फिर मिलने के वादे के साथ समाप्त होगा।
Certainly, IFFI aims to celebrate films, their stories and the people who make them, and it also promotes and spread a love for films. Building bridges of understanding and camaraderie among the people, and of course providing a platform for filmmakers by showcasing their work. So we have more on this from our correspondent.
On the final day of 55th International Film Festival of India 2024, closing film Dry Season was screened in two theaters, marking the culmination of movie screenings in this year's festival. The closing ceremony is just few hours away from now, which will feature several cinema personalities. The event will also witness the announcement of the reputed Golden Peacock Award, other than the several other awards. Earlier in the day, at a special in-conversation session at Kala Academy Goa, on the sidelines of IFFI 2024, renowned filmmaker Ramesh Sippy emphasized the importance of professional training and practical experience for aspiring filmmakers. Ramesh Sippy was speaking at Passion for Perfection, Ramesh Sippy's philosophy session. Addressing the jam-packed auditorium, Mr. Sippy said, "Young filmmakers must strike a balance between formal education and hands-on experience to excel in the craft of filmmaking."
It's important to have both. The education is equally important, but applying it correctly and not stopping there, carrying on and using it in practice. But the practical side of education is equally important.
Discussing the challenges in the industry, he remarked that increased budgets, tighter deadlines and corporate involvement have streamlined the filmmaking process. He said, "Everything is planned even post-shooting, unlike earlier when there was room for last-minute creativity."
But the corporates and all that have come in and want to do a very streamlined business, they want everything in advance, the budgets and all. You can't think on the set and decide to take 23 days to shoot a film. That is no longer allowed. That's the reason why you have to plan your shoots. And even these kind of thoughts of whether you do it in the wind or you do it, you think it in advance. You sit amongst your technicians and writers and everyone, say, what is the best way to go about this? You come to those conclusions and then try to see that the same thing can be done in a much shorter period of time.
The insightful session and the screening of Dry Season were among the highlights of the festival's final day. As the curtains draw to a close, IFFI 2024 leaves behind a legacy of celebrating cinematic excellence and fostering meaningful dialogue in the world of film. For Parikrama with Durgesh Bhadauria, Om Vesh Upadhyay, Goa.
और अब कार्यक्रम में समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का, और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है, तो इस क्रम में सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग में 29वां जिला पुस्तक मेला सफलता के साथ कल संपन्न हो गया, तो सुनते ही रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग में 29वां जिला पुस्तक मेला सफलता के साथ कल 27 नवंबर को संपन्न हुआ। दार्जिलिंग के कैपिटल हॉल में इस पुस्तक मेले का विधिवत उद्घाटन 23 नवंबर को जीटीए सभा के अध्यक्ष अंजुल चौहान ने किया था। इस 5 दिवसीय पुस्तक मेले में नेपाली साहित्य जगत के लेखक, कवि व पत्रकारों की विशेष उपस्थिति रही। साहित्य से जुड़े विभिन्न संघ संस्था व प्रकाशनों ने अपने स्टॉल लगाए थे। स्टॉलों पर नेपाली, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत व अंग्रेजी भाषा के विभिन्न पुस्तकें बिक्री हेतु उपलब्ध थीं। इस अवसर पर कई पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों की भी उपस्थिति मेले में दिखी। पुस्तक मेले के 5 दिन लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा, परिचर्चा, नेपाली भाषा व भावी खतरा, सृजनात्मक साहित्य, बाल साहित्य, कविता वाचन प्रतियोगिता, नेपाली साहित्य कल और आज, मानव तस्करी, चित्र बनाओ प्रतिस्पर्धा आदि का आयोजन किया गया। समाज के अनुभवी, विज्ञ तथा दक्ष व्यक्तियों ने साहित्य परिसंवाद में सहभागिता करते हुए वर्तमान युवा पीढ़ी में पुस्तक पठन की घटती प्रवृत्ति पर चिंता जताई। वर्तमान समय में युवा सामाजिक संजाल, गूगल आदि पर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे उनकी यथार्थ व व्यवहारिक ज्ञान दोनों का स्तर घट रहा है। सामाजिक संजाल या गूगल में अर्जित जानकारी अधूरी व सीमित होती है। यह विचार सभी ने व्यक्त किए। नेपाली भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए पुस्तक पढ़ना महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा और समाज के लिए उसका साहित्य ही उसका दर्पण है। विशेषकर युवाओं में पुस्तक पढ़ने के स्वभाव विकास के लिए गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन, जिला पुस्तकालय व राज्य सरकार का यह संयुक्त पहल काफी कारगर सिद्ध हो रही है, ऐसा मानना है जीटीए के मुख्य कार्यपाल अनित थापा का। नेपाली भाषा को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष के अगस्त से सभी सरकारी कामकाज नेपाली भाषा में करने के निर्देश दिए गए हैं। सिक्किम की सरकार ने भी सरकारी आदेश नेपाली व अंग्रेजी दोनों भाषा में जारी करना अनिवार्य कर दिया है। जीटीए ने भी दोनों भाषा का प्रयोग अनिवार्य किया है। वर्ष 1996 से आरम्भ इस वार्षिक पुस्तक मेला और इसमें आयोजित चर्चा परिचर्चा का परिणाम है कि अंग्रेजी के बढ़ते प्रचलन से संकट में आई नेपाली भाषा को पुनर्जीवित करने व लोकप्रिय बनाने में काफी मदद मिल रही है। परिक्रमा के लिए अशोक चौरसिया, आकाशवाणी कर्शियांग।
और एक अन्य और पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं। जी हाँ, अब दार्जिलिंग से ले चलते हैं लद्दाख।
राइट, वेयर पद्मा डोलकर, अ यंग फोक म्यूजिक एंड डांस आर्टिस्ट फ्रॉम द विलेज वानला ऑफ लद्दाख, इज द फर्स्ट लद्दाखी अवार्डेड विद द 2023 उस्ताद बिस्मिल्ला खान पुरस्कार। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम देयर।
पद्मा डोलकर, अ यंग फोक म्यूजिक एंड डांस आर्टिस्ट फ्रॉम विलेज वानला ऑफ लद्दाख, is the first Ladakhi awarded with Ustad Bismillah Khan Puruskar 2023. Dholkar, in her school days, got first opportunity in All India Radio and Doordarshan Lea to sing in children program and thus begin his journey in folk music. More from Padma Dholkar.
राजस्थान में मुझे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं लद्दाख की पहले युवा हूँ जिसको बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, और इससे मुझे लगता है कि बहुत जितने भी हमारे लद्दाख की युवा है सबको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा इस अवार्ड से। तो मैंने सिंगिंग थोड़ी सी शौक थी बचपन से, जब तो मेरी मम्मा ने पहली बार मुझे छोटा सा गाना सिखाया था, इसके बाद मुझे रेडियो स्टेशन में पहली बार चिल्ड्रेन प्रोग्राम में मुझे गाने का मौका मिला, दूरदर्शन में मुझे वहाँ के चिल्ड्रेन प्रोग्राम में गाने का मुझे मौका मिला।
Padma thanked all for the encouragement and constant support to represent Ladakh at national level. Dholkar is seen as an inspiration to revive the folk music in Ladakh. For Parikarma, this is Khurshid Yusuf from Leh, Union Territory of Ladakh.
और लद्दाख से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। आस्था का महापर्व महाकुंभ 14 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू हो जाएगा। 45 दिन तक चलने वाले इस पर्व को दिव्य और भव्य बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य की पर्यटन और वैश्विक स्तर पर पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी एक बड़ा अवसर है। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट।
महाकुंभ में आने वाले संत महंत और श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। साफ सफाई से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आकाशवाणी से बातचीत में प्रयागराज के मेयर गणेश केसरवानी ने कहा कि प्रयागराज में सदियों से माघ मेला, अर्धकुंभ और कुंभ मेला लगता रहा है। यहाँ के लोग ऐसे आयोजनों के अभ्यासी रहे हैं।
देखिए, प्रयागराज एक बहुत ही पौराणिक धार्मिक आध्यात्मिक शहर है और सदियों से यहाँ पर कुंभ मेला, माघ मेला, अर्धकुंभ मेला लगता रहा है। प्रयागराज की जनता इसकी अभ्यासी रही है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रयागराज के उप मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं माननीय केशव जी के नेतृत्व में बड़े ही उत्साह के साथ एक दिव्य और भव्य और नव और हरित और स्वच्छ कुंभ की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो प्रयाग का पौराणिक महत्व है, गौरव है, उसको भी इस बार दिव्य भव्य और नव्य और हरित कुंभ में दुनिया को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया जा रहा है और एक सुंदर शहर सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त यह शहर पूरे विश्व को आकर्षित करेगा, उस प्रकार का एक व्यवस्था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर हमारे नगर निगम शासन की ओर से हम सब सभी माननीय पार्षदों के व्यापक सहयोग से यह सब संभव हो रहा है।
बड़े उत्साह के साथ दिव्य भव्य नव्य हरित और स्वच्छ कुंभ की तैयारी पूरी है। सड़कों के चौड़ीकरण के साथ ही दीवारों पर धार्मिक पेंटिंग भी करवाई गई है। महाकुंभ को देखते हुए प्रयागराज के प्राचीन महत्व बताने वाले स्थलों और घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पौराणिक महत्व वाला यह आयोजन पूरे विश्व को आकर्षित करे। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
और परिक्रमा कार्यक्रम में वक्त हुआ है व्यापार जगत की हलचल जानने का।
राइट, सो डोमेस्टिक बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड विद लॉसेस ऑफ नियरली 1.5% अमिड वीकनेस इन द आईटी एंड ऑटो स्टॉक्स एंड कंसर्न्स अबाउट ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स टैंक्ड 1190 पॉइंट्स और 1.48% टू क्लोज एट 79,044, व्हाइल द एनएससी निफ्टी 50 ड्रॉप 361 पॉइंट्स और 1.49% टू सेटल एट 23,914. In the global crude market, Brent crude was trading at 0.78% up at $73.40 per barrel, and WTI crude gained 0.64% to trade at $69.16 per barrel when reports last came in.
और खेल जगत की हलचल की जानकारी लेकर स्टूडियो पहुंच चुके हैं धर्मेंद्र। धर्मेंद्र बताएं, सबसे पहले खेलों की शुरुआत कहां से करेंगे?
मुकेश, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो लखनऊ में चल रहा है, वहां से भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स और पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। शीर्ष वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने इसराइल के डेनिल डुबोवेंको को 21-14, 21-13 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। इसी वर्ग में मीराबा लुआंग मैसनाम और आयुष शेट्टी ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। उधर महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु अपने ही देश की इरा शर्मा को 21-10, 12, 21 और 21-15 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके अलावा उन्नति हुड्डा और श्रियांशी वालीशेट्टी भी अंतिम आठ में पहुंच गई हैं। उधर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल के पैरा एथलीट रिंचेन युडॉल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहली विश्व पैरा पूम से ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 23 देशों के 140 एथलीटों की वरिष्ठ महिला श्रेणी में खेलते हुए बोध खरबू की रिंचेन ने शानदार प्रदर्शन किया। ताइक्वांडो में ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे लद्दाख की पहली एथलीट हैं। उधर इंडियन सुपर लीग आईएसएल में आज केरला ब्लास्टर्स एफसी का सामना एफसी गोवा से होगा। ये मुकाबला कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल बेंगलुरु एफसी ने मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को 2-1 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु एफसी ने इस सीजन में कोलकाता के सभी 3 क्लबों को पराजित किया। सुनील छेत्री इंडियन सुपर लीग में सभी 15 टीमों के खिलाफ गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
Right, and now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
November 28, 1890. The country lost a great social activist, thinker, anti-caste social reformer and writer from Maharashtra, who left an indelible mark on the times by his great works during British India rule. He was Jyotirao Govindrao Phule. Popularly known as Jyotiba Phule, he was bestowed with the honorific Mahatma title by well-known social activist Vithal Rao Krishnaji Vandekar in 1888.
Phule and his wife Savitri Bai Phule were pioneers of women's education in India.
Jyotirao Govindrao Phule was born in Pune in 1827 in a so-called lower caste community. As a young child, Jyotirao was withdrawn from school and he joined the menfolk of his family at work, both in the shop and the farm. However, an elderly Christian friend recognized Phule's intelligence and persuaded Phule's father to allow him to attend the local Scottish Mission High School. Phule completed his English schooling in 1847.
The turning point in his life was in 1848, when he attended the wedding of a so-called higher caste friend. Phule participated in the marriage procession, but was later rebuked and insulted by his friend's parents for doing that. This incident profoundly affected Phule on the injustice of the caste system.
Later, at the age of 21, Phule visited a girls' school in Ahmednagar run by Christian missionaries. He read Thomas Paine's book, Rights of Man, and developed a keen sense of social justice. He realized that so-called lower castes and women were at a disadvantage in Indian society, and also that education of these sections was vital to their emancipation.
Phule first taught reading and writing to his wife, Savitri Bai, and then the couple started the first indigenously run school for girls in Pune in 1848. The so-called upper castes of Pune did not approve of his work, but many Indians and Europeans helped him generously. Conservatives in Pune also forced his own family and community to ostracize him. During this period, their friend Usman Sheikh and his sister Fatima Sheikh provided them with a roof over their heads. They also helped them start a school on their premises.
Later, the Phules started schools for children from the so-called lower castes. In 1852, there were 3 Phule schools in operation and 273 girls were pursuing education in these schools.
The plight of women and widows in the society also moved Phule. In those days, widows were treated badly and even their shadows were considered to be inauspicious. They were made to attach a broom to their backs to wipe the path on which they had travelled. He championed widow remarriage and started a home for pregnant widows to give birth in a safe and secure place in 1863.
Phule established an orphanage in an attempt to reduce the rate of infanticide. Phule daringly got pamphlets stuck around Pune, advertising in the following words:
"Widows, come here and deliver your baby safely and secretly. It is up to your discretion whether you want to keep the baby in the center or take it with you. This orphanage will take care of the children left behind."
The Phule couple ran the infanticide prevention center till the mid-1880s.
On the 24th of September, 1873, Phule formed Satya Shodhak Samaj to focus on rights of depressed classes and women. We pay tributes to the great social reformer Mahatma Jyotiba Phule on his death anniversary.
And now, after paying tributes to the great freedom fighters of our country, we move forward by paying tributes to some other great personalities of different fields. And we start with...
जी हाँ, बिल्कुल. प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक भालजी पेंढारकर की आज पुण्यतिथि है. उन्होंने सन 1991 में सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया था और उनका पूरा नाम भालचंद गोपाल पेंढारकर था. भालचंद गोपाल पेंढारकर ने मराठी फिल्मों को जिस तरह संवारा वो काफी अद्भुत है. भारत का पहला देसी कैमरा बनाने वाले बाबू राव ने 1925 में बनाई गई भारत की पहली प्रयोगवादी फिल्म सावकारी पाश को 1936 में आवाज दी. सिंहगढ़ की शूटिंग के लिए उन्होंने पहली बार रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल किया. पेंढारकर पुणे के सिनेमाघर में गेटकीपर थे. 1927 में वंदे मातरम आश्रम बनाने की वजह से गिरफ्तार हुए पेंढारकर ने 88 वर्ष की उम्र में अपनी मुख्य फिल्में नेताजी पालकर, थोर तंची कमल, छत्रपति शिवाजी, मराठा, तुतुका मेलवाला और तामटी माटी आदि फिल्में रखी थी और उनकी अंतिम फिल्म जो थी शाबाज सुनवाई थी.
Right, and the next personality we pay tribute to is Birendranath Sarkar, BN Sarkar, who's having his death anniversary today. He was an Indian film producer and the founder of the New Theatres in Calcutta. He made Bengali language films that were noted for introducing many film directors who later became very famous. He was awarded the Dada Saheb Phalke Award in 1970 and he also received the Padma Bhushan in 1972. In 1935, P.C. Barua directed an acted in Devdas, which was based on Sharad Chandra Chatterjee's novel Devdas, and this film became phenomenally very successful, which was again produced by New Theatres. Kanan Devi was the first popular star actress who appeared in many films produced by New Theatres, and also there was a group of talented actors with New Theatres like K.L. Sehgal, K.C. Day, Prithviraj Kapoor, and many others who became famous later. And of course, there is a famous song from a movie which was produced by New Theatres Calcutta.
या मोहब्बत का सुरूप तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर ये मेरा दीवानापन है.
There were another movies, a few more movies like Vidyapati, Badi Didi, President and all, which became very famous under this production house.
क्या क्या रंग दिखाए जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए क्या क्या रंग दिखाए जिंदगी क्या क्या रंग दिखाए कठपुतली की तरह आदमी को भी नाच नचाए क्या क्या रंग दिखाए जिंदगी क्या.
और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार और सिनेमा कथा लेखक शंकर शेष की. वे नाटक साहित्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक थे. समकालीन परिवेश और युगीन परिस्थितियों से उनके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता का निर्माण हुआ था. शंकर शेष बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचाने जाते हैं. वे मुंबई में एक बैंक में हिंदी अधिकारी के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था और उन्होंने एक जो कहानी लिखी थी उसमें घरौंदा फिल्म बनाई गई थी, तो क्यों ना उसका गाना सुन लिया जाए.
रात में या दोपहर में
आबुदाना ढूंढते हैं आशियाना ढूंढते हैं
आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में.
Now we come to the birth anniversaries and we pay tribute to Puduperi Ravi Shankar, also known as Kempe Gowda Ravi, Ammaruga Ravi Shankar, who is having his birth anniversary today. And he rose to fame with the 2011 blockbuster Kempe Gowda. And he has also acted in a few Telugu and Tamil films. He dubbed for many films. And he won 9 State Nandi Awards for Best Male Dubbing Artist and 2 Tamil Nadu State Film Award for Best Male Dubbing Artist.
और हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार अमर गोस्वामी का आज जन्मदिन है. वे मनोरमा और गंगा जैसी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं से लंबे समय तक जुड़े रहे थे. अमर गोस्वामी साहित्यिक संस्था वैचारिकी के संपादक भी रहे. उन्होंने कई साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया. अमर गोस्वामी ने एक प्रधानाध्यापक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था और अमर गोस्वामी की प्रमुख रचनाओं में हिमायती, महुए का पेड़, अरण्य में हम और धरती पुत्र जैसी कई रचनाएं प्रकाशित हुई.
We also pay tribute to Pramod Karan Sethi, who was an Indian orthopedic surgeon. With Ramchandra Sharma, he co-invented the Jaipur foot in 1969. Jaipur foot is a rubber-based prosthetic leg for people with below-knee amputations. But yes, an inexpensive and flexible artificial limb. Jaipur foot provides free prosthetic limbs to those in need, enabling them to regain mobility. He was awarded the Magsaysay Award for Community Leadership in 1981 and
the Padma Shri by the government of India in 1981.
बिल्कुल अनुजा, मशहूर अभिनेत्री सुधा चंद्रन को भी उनके ही अस्पताल में पैर लगाया गया था। तो श्रोताओं, इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in। नमस्कार।
नमस्कार।